नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना की राजधानी एक्रा पहुंचे। प्रधानमंत्री आज रात घाना की संसद को संबोधित करेंगे, जहां उन्हें घाना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका ने हथियारों के भंडार में कमी का हवाला देते हुए यूक्रेन को आपूर्ति रोकी। ईरान के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले कानून को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कहा, अगले 6 दिनों में उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में सक्रिय मॉनसून की स्थिति जारी रहने की संभावना। वार्षिक अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच कल से शुरू होगी। और भारत ने एजबस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के साथ मैच में सधी हुई शुरुआत की। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज घाना की राजधानी एक्रा पहुंचे। प्रधानमंत्री आज रात घाना की संसद को संबोधित करेंगे। श्री मोदी को उनकी घाना की राजकीय यात्रा के दौरान घाना का सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया जाएगा। और जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने घाना गए हमारे संवाददाता आलोक राय से। आलोक, प्रधानमंत्री मोदी के आज क्या क्या कार्यक्रम हैं?
जी लवलीन जी, जैसा कि आपने बताया कि मोदी जी अभी यहाँ एक्रा में घाना में पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो कैंपिंस्की होटल गोल्ड कोस्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को जुबली हाउस, जिसे फ्लैगस्टाफ हाउस भी कहते हैं, यहाँ पर डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगी और साथ में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कुछ MOUs साइन होने की और एक्सचेंज होने की आशा है और उसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट होगा। इसके बाद रात में राष्ट्रपति महामा मोदी जी के लिए एक स्टेट डिनर का आयोजन कर रहे हैं और उसके बाद MEA की प्रेस ब्रीफिंग होगी, जो दिन भर के जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद कल प्रधानमंत्री का इंडियन कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन है। उसके बाद वो क्वामे एनक्रुमा मेमोरियल पार्क जाएंगे और उसके बाद वह घाना की पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही खास है कि वो घाना की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं। बहुत ही कम वर्ल्ड लीडर्स को ऐसा मौका मिलता है।
जी आलोक, अभी आपने MOUs के बारे में बात की थी, तो दोनों देशों के बीच कौन कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं?
जी कई MOU और एग्रीमेंट की आशा है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे वो जॉइंट कमीशन एक MOU साइन होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक वैक्सीन हब की बात की जा रही है, जो घाना और वेस्टर्न अफ्रीका के देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेदा के ऊपर भी एक MOU साइन होने की संभावना है और साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज पर एक MOU की घोषणा होने की भी संभावना है। जी लवली,
धन्यवाद आलोक इस जानकारी के लिए। पिछले 30 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा है। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना ग्लोबल साउथ में भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है और उसने अफ्रीकी संघ तथा पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री 5 देशों घाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामिबिया की यात्रा पर आज सवेरे रवाना हुए। घाना में भारत के उच्चायुक्त मनीष गुप्ता ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष बातचीत में भारत घाना साझेदारी की बढ़ती शक्ति और बहुक्षेत्रीय गहराई पर प्रकाश डालते हुए इसे पश्चिम अफ्रीका में सबसे गतिशील द्विपक्षीय संबंध बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग दोनों देशों के बीच जुड़ाव के प्रमुख स्तंभ हैं।
Economic trade and investment, these are one of the key pillars of our partnership with Ghana. Ghana's economy is now on the rebound. Since late last year, the economy has grown consistently by 4-5% on quarter-on-quarter basis. So that implies once the country gets out of the economic restructuring, you will have a slew of foreign investments and that offers a new opportunities also to the Indian companies to invest over here.
श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। घाना ने भारत के अरिमा फार्म्स और फसल अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती की पहल शुरू की है। ये खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गेहूं के आयात में सालाना 400 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और स्थानीय खेती को बढ़ावा देना है। अरिमा फार्म्स के प्रबंध निदेशक सालई मणिकम ने बताया कि किस तरह दक्षिण सहयोग कृषि नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
We have brought wheat after a research of 2 years along with the CSIR, their crop research institute in Kumasi. Wheat is also consumed in a huge quantity, but 100% of the wheat was imported. So we thought that was one of the crops which could be indigenously grown here, developed here. So that's why we focused on wheat. So it will help in substituting the import.
क्वाड संगठन के सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों, षड्यंत्रकर्ताओं और धन उपलब्ध कराने वालों को तुरंत दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से सहयोग करने का आह्वान किया है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। बैठक में सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका ने हथियारों के भंडार में कमी का हवाला देते हुए यूक्रेन को कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम अमेरिकी सैन्य सहायता की वैश्विक समीक्षा के बाद उठाया गया है, जिसमें जोर दिया गया है कि अमेरिका के हित सर्वोपरि हैं। रोकी गई आपूर्ति में यूक्रेन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण वायु रक्षा अवरोधक और सटीक मार करने वाले हथियार शामिल हैं। एक अन्य घटनाक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 घंटे फोन पर चर्चा की और उनसे यूक्रेन के साथ युद्ध विराम का आग्रह किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने से संबंधित है। ये ईरान द्वारा अपनी परमाणु गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ गतिरोध में उठाए गए सबसे कठोर कदमों में से एक है। ये निलंबन ईरान की संसद द्वारा विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद हुआ है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मारिया थेरेसा लाजोरो को फिलीपींस के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे भारत फिलीपींस संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर काफी आशान्वित हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सभी मादक पदार्थ गिरोहों को खत्म करने और युवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वैश्विक मादक पदार्थ उत्पादन का भंडाफोड़ करने पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक देशों में संचालित इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। गृहमंत्री ने कहा कि भारत की एजेंसियां लगातार इन गिरोहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भुगतान के माध्यमों की निगरानी कर रही हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्ष में कर्मचारियों और नियोक्ताओं को 1,00,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 5 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है।
ये स्कीम प्रधानमंत्री जी की एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नीति का नतीजा है। देश के युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए 5 साल का कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया था, उसके तहत एला स्कीम लाई गई है। एला स्कीम के द्वारा देश में जो यूथ नया जॉब में आता है उसको 1 साल में 2 किस्त में 7,500 रुपया DBT के माध्यम से उसके अकाउंट में डाला जाएगा।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय में प्रोत्साहन आधारित रोजगार योजना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी सरकार की जन केंद्रित नीतियों और परियोजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से पिछले 11 वर्षों में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज पटना में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत सबसे बड़े आयातक से लगभग 24,000 करोड़ रूपये का निर्यात बन गया है।
आज डिफेंस के हथियार, मिसाइलें कहीं बन रही हैं तो भारत की धरती पर बन रही हैं, भारतवासियों के हाथों से बन रही हैं, और हम दुनिया के दूसरे देशों को उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इस समय हमारा एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2029 समाप्त होते होते हम डिफेंस इक्विपमेंट्स का उसका हम दुनिया को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट करेंगे। 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट करने का काम इस समय भारत कर रहा है।
जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आज नई दिल्ली में एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया। ये वेब आधारित प्लेटफॉर्म गांव स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ की जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में ये प्रणाली महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों में कार्यरत है। उत्तराखंड में आज टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रियों को ले जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 3 कांवड़ यात्रियों की मृत्यु हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। सभी कांवड़ यात्री उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले 6-7 दिन के दौरान मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश स्थानों पर अगले 7 दिन के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। विभाग ने पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में 38 दिन तक चलने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से पहलगाम और गांधरबल जिले के बालतल से कड़ी सुरक्षा के बीच औपचारिक रूप से शुरू होगी। बालतल मार्ग की ओर 2,300 से अधिक और पहलगाम मार्ग से 3,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को लेकर लगभग 299 वाहन श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से कश्मीर पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट।
जम्मू से कश्मीर पहुंचने के बाद पहले जत्थे में 5,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। बालतल मार्ग की ओर 2,300 से अधिक तीर्थयात्रियों और पहलगाम मार्ग की ओर 3,000 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले कुल 299 वाहन श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षित पहुंच गए। कश्मीर घाटी में पहुंचने पर स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन की ओर से भव्य स्वागत के बाद बम बम भोले और जय बर्फानी बाबा के नारे गूंज उठे। निर्बाध, सुरक्षित और संरक्षित यात्रा के लिए विस्तृत अचूक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
बर्मिंगम में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने सधी हुई शुरुआत की है। मैच के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 196 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने चाय तक 3 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए थे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 83,410 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 25,453 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹85.70 पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल का मूल्य $67.93 प्रति बैरल और WTI क्रूड का मूल्य $66.28 प्रति बैरल पर चल रहा था।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के राजधानी एकरा पहुंचे। प्रधानमंत्री को आज घाना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका ने हथियारों के भंडार में कमी का हवाला देते हुए यूक्रेन को आपूर्ति रोकी। ईरान के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले कानून को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कहा अगले 6 दिन में उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में सक्रिय मॉनसून की स्थिति जारी रहने की संभावना। वार्षिक अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच कल से शुरू होगी। और भारत ने एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के साथ मैच में सदी हुई शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।